राधे
जगद्गुरु कृपालु परिषद प्रेजेंटिंग चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ पॉडकास्ट फॉर अ बेटर एग्जिस्टेंस।
कल एक प्रश्न पैदा हुआ था कि अगर परमात्मा और जीवात्मा का वियोग हो सकता है, चाहे वह एक क्षण को भी क्यों ना हो, तो फिर उस क्षण में जीव के ऊपर कौन रहा, माया अथवा ईश्वर अथवा जीव? स्वयं जीव के ऊपर कौन है? अगर जीवात्मा रहा तो वह तो न्यूट्रल पर्सनैलिटी है, जीवात्मा स्वयं में नहीं रह सकती, या तो माया उस पर हावी रहेगी या ब्रह्म हावी रहेगा। और जब परमात्मा का वियोग हम लोग मानते हैं तो फिर जीवात्मा पर माया हावी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों ने एक कथानक सुना होगा कि राम भगवान ने एक पत्थर समुद्र में फेंक दिया और वह डूब गया, तो वानरों को बहुत आश्चर्य हुआ कि राम नाम लिखने से तो पत्थर तैर रहे हैं और राम ने स्वयं पत्थर फेंका तो वह डूब गया। लेकिन हनुमान जी ने कहा, भगवान जो आपसे पृथक होगा वह डूबेगा नहीं तो क्या होगा? केवल आप ही एक ऐसी शक्ति हैं जो माया से बचाए रखते हैं। आपने अगर अपनी शक्ति माइनस की तो माया का आधिपत्य हो ही जाएगा, कोई शक्ति उसको रोकने वाली नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने उन गोपियों के मिलने के बाद वियोग कैसे किया, अर्थात भगवान से मिलने के बाद फिर वियोग कैसा? भगवान से मिलने के बाद वियोग असंभव है। फिर श्याम सुंदर ने ब्रज गोपियों का परित्याग क्यों किया? यह कौन कहता है कि श्याम सुंदर ने ब्रज गोपियों का परित्याग किया? एक दूसरी सखी उत्तर दे रही है जो गोलोक की गोपी है। वह कहती है कि कौन कहता है ब्रज गोपियों का परित्याग श्याम सुंदर ने किया? परित्याग शब्द का प्रयोग तो संसार में भी नहीं कर सकते। परित्याग माने जिससे बाहर भीतर दोनों प्रकार से नाता तोड़ दिया जाए, यानी शरीर संग भी ना हो और मन से भी संग ना हो, अटैचमेंट श्याम सुंदर से ना हो। बाहर से त्याग त्याग नहीं माना जाता। संसार में बाहरी त्याग को हमेशा वियोग नहीं कहा जाता। ऐसा कौन है संसार में जो हर समय चिपका रहता हो? इससे शारीरिक वियोग का नाम तो संसार में वियोग नहीं उतरता, इसलिए यह परिभाषा ही गलत है। भोले लोग परित्याग कहते हैं कि गोपियों का परित्याग हो गया। अगर वह ये सिद्ध कर दें कि हमारा उनसे मानसिक अटैचमेंट नहीं है अथवा श्याम सुंदर हमसे प्यार नहीं करते हैं, प्रियतम ने हमको अपने हृदय से निकाल दिया है, ऐसा तू सखी कैसे कहती है? अगर तू कहे कि तुझसे किसी ने कहा था तो यह भी गलत है, क्योंकि संसार में हम देखते हैं कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं, तो क्या भगवान यह काम नहीं कर सकते? और श्याम सुंदर तो सीधी बात कभी कर ही नहीं सकते। यह प्रत्येक जीवात्मा से कहते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं, किसी से नहीं कहते कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, तो यह झूठ हुआ। संसार में जो हमसे प्यार करता है उसकी लिमिटेड शक्ति होती है, इससे वह अधिक से अधिक प्यार करने में बट जाता है। इससे वह अधिक से प्यार करेगा तो वो प्रेम बट जाएगा, किंतु संसार और भगवान और संत इनके प्यार में अंतर है। भगवान और संत प्रत्येक जीव से प्यार करते हैं और उसी प्रकार से प्रेम प्रदान करते हैं जिस प्रकार से एक एक से करते हैं। वहाँ प्यार घटता नहीं, जैसे स्त्री पति आपस में प्यार करते हैं लेकिन जब बच्चे हो गए तो उनका प्यार बच्चों में बट जाता है। वह पांच बच्चे हो गए और प्यार बट गया, उन सब में उनका मन बट गया, चिंतन बट गया। अब आपके पास एक घंटा है तो वह एक घंटा में पांच में बट गया। प्रत्येक में केवल 12-12 मिनट मिलेंगे, लेकिन किसी से अधिक होगा, दूसरे से कम होगा, तो ये पक्षपात भी होगा। तो संसार का जो प्रेम है वो बट जाता है, लेकिन संत और भगवान अमोघ अचिंत्य महाशक्ति से युक्त होता है, योग माया की शक्ति से युक्त होता है, इससे उनका प्यार घटता नहीं है। नारद जी को यह शंका हो गई कि अगर संसार में किसी की दो स्त्रियां हैं तो दोनों ईर्ष्या करती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 पटरानियां और एक एक से 10-10 बच्चे, फिर उनके प्यार में घटबड़ नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान ने उनको यह अनुभव करा दिया कि यह तुम इंसान के बारे में तो नारद सोच सकते हो, लेकिन भगवान की शक्ति के भाग नहीं होते। मैं अनंतानंत जीवों के अनंतानंत जन्मों के अनंतानंत कर्मों का हिसाब रखता है, अपनी फाइल में दर्ज रखता है और उसका समय पर फल देता है, इतना महत्वपूर्ण कार्य करता है, फिर हम लोगों से प्यार करने में उसे क्या कष्ट हो सकता है? जबकि वह अनंत कोटि जीवों के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है, क्योंकि उसको न्याय जो करना है और उन कर्मों के अनुसार उसको फल देना है। फिर श्याम सुंदर ने ब्रज गोपियों का परित्याग कर दिया, यह किस आधार पर कहा गया? लेकिन प्रश्न तो है, सखी यह तुझसे श्याम सुंदर ने कहा नहीं और दूसरे के कहने का आधार क्या हो सकता है? उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया, अच्छा तो सखी बता, वे आए क्यों नहीं, वे लौट कर नहीं आए, क्या क्या यह इसका प्रमाण है कि उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया? ये तो बड़े भोले बच्चों की बात हो गई। संसार में भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं करता। देखो, एक स्त्री पति प्यार करते हैं, पति इंग्लैंड अमेरिका पढ़ने के लिए जाता है, 10 साल तक नहीं आता। वे किस लिए जाता है? बीबी को सुख देने के लिए, वहाँ से बढ़िया बढ़िया सामान लाने के लिए, हाई क्लास का सामान। लाखों रुपया मिलेगा बीबी को, अधिक सुख मिलेगा, बीबी का और अधिक प्यार बढ़ेगा। इसलिए वे 10 साल अपनी पत्नी से दूर रहा। अरे, किसी का बेटा बीमार है, सीरियस है, टाइफाइड है, बच्चे को बुखार हो गया, उसने गाड़ी उठाई, दौड़ा। देखिए, पिता बच्चे से प्यार करता है, उसकी हालत सीरियस हो रही है, उसको देखने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं, लेकिन वह बच्चे को छोड़कर भाग रहा है। प्यार है तभी तो दवा लेने के लिए जा रहा है। देखिए, पृथक हो गया, दूर हो गया, लेकिन प्यार है और उसी के कारण हो रहा है। माँ बच्चे को मार मार कर स्कूल भेजती है। क्यों, उससे द्वेष है? नहीं, वह बेटे के लिए ही, उसके प्यार से ही उसको मार कर स्कूल भेज रही है। बच्चे को फोड़ा हो गया, गोद में रखकर चीरा दिलवाती है। माँ बाप को बच्चा समझता है कि ये मेरे दुश्मन है। नहीं नहीं बेटा, ये प्यार है। लेकिन क्रिया देखी जाए तो दुश्मनी की ही लगती है। इसीलिए सखी, श्याम सुंदर चले गए और लौट कर नहीं आए, तो इससे तो ये भावार्थ क्यों निकालती है कि उनके मन का अटैचमेंट हमसे नहीं है? बड़े बड़े अटैचमेंट वाले इस संसार में हैं, लेकिन वे भी अलग रहते हैं, काम करने के लिए बाहर जाते हैं। इससे सखी, श्याम सुंदर नहीं आए तो इससे यह सिद्ध हुआ कि वे हमसे प्यार करते हैं। ये तू कैसे सिद्ध करेगी कि उनके हमारा मन का अटैचमेंट नहीं है, वो प्रेम नहीं करते? इससे ये तेरा प्रश्न गलत है। तो दूसरी सखी वेद की ऋचा कहती है, लेकिन सखी आंखों के सामने तो आए नहीं, इंद्रियों का वियोग तो उन्होंने दे दिया। या ठीक है सखी, मन बुद्धि से उनका वियोग नहीं हुआ, लेकिन शरीर का वियोग तो उन्होंने दे दिया। इससे अब मेरा प्रश्न सुन, उन्होंने शरीर से भी वियोग क्यों दिया? लेकिन सखी, शरीर के त्याग को त्याग नहीं कहते। हाँ सखी ठीक है, लेकिन मैंने सगुण साकार श्री कृष्ण से प्यार किया है। अगर मुझे शरीर और इंद्रियों का रस ना लेना होता तो मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करती। श्याम सुंदर और निराकार ब्रह्म में यही तो अंतर है कि निराकार ब्रह्म का केवल अंतःकरण की समाधि पर रियलाइजेशन मात्र होता है, और सगुण साकार ब्रह्म का रियलाइजेशन अपनी एक एक इंद्रियों से होता है, रस प्राप्त होता है। इससे अगर श्याम सुंदर ने शरीर से वियोग दे दिया तो हमारे लिए निराकार ब्रह्म की उपासना ही ठीक होगी। अगर हम केवल समाधि में परमानंद का अनुभव करना चाहते तो सगुण साकार श्याम सुंदर से प्यार क्यों करते? अरे सखी, मान लिया लेकिन कहा कि इस परित्याग में भी प्यार संबंधी ही कोई राज होगा। सखी यह नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए कि संसार में जब कोई शरीर से पृथक होता है तो प्यार कम हो जाता है। जैसे एक बाप बेटा जब तक आमने सामने रहते हैं खूब एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रत्येक को रस मिलता है, लेकिन जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं किन्हीं व्यवहारिक कारणों से, तो धीरे धीरे प्यार कम होने लगता है। अरे प्यार का तो विस्मरण हो जाता है, दोनों भूल भी जाते हैं। लेकिन जितने अधिक बीच बीच में एक दूसरे से वह मिलते रहते हैं उतनी ही नज़दीकी बनी रहती है। इसलिए श्याम सुंदर ने शरीर से त्याग दिया, उनका प्यार भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और सखी एक दिन तो समाप्त हो जाएगा। प्यार में यह शारीरिक त्याग किस प्रकार से हेल्पर है, यह बात समझ में नहीं आती। सखी ने उत्तर दिया, संसार का प्यार इसलिए कम हो जाता है सखी, क्योंकि लोग अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। अपना सुख नहीं मिल रहा तो प्यार धीरे धीरे कम हो जाता है। दर्शन का सुख भी तो इंद्रियों का सुख ही है। अब कोई भी सुख जो मिल रहा है उसका वियोग हो जाए तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सखी दूसरा कारण सुन, संसार में जो प्यार करते हैं उसे आसक्ति कहते हैं, वह दिव्य प्रेम नहीं है। आसक्ति का अर्थ है प्रतिक्षण घटमान और प्यार का लक्षण है प्रतिक्षण वर्धमान, बिल्कुल उल्टा। दुनिया में जिस चीज से आपका प्यार होगा पहले बहुत ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर खत्म हो जाएगा। पहले विवाह हुआ, कितना खर्च किया, पहले दिन बीबी से कितना प्यार होता है, पहली बार जब बच्चा होता है कितनी खुशी होती है, कितना खर्च हम लोग करते हैं। एक बार स्कूटर खरीदा, गाड़ी खरीदी, कितनी खुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। ये सब चीज़ें नश्वर हैं, इसलिए इनका प्यार घट जाता है। इससे सखी हम श्याम सुंदर के लिए जो प्यार करते हैं ना, उनका प्यार दिव्य है, वह प्रतिक्षण वर्धमान है। इससे तुम्हारा जजमेंट यहाँ उल्टा हो गया। संसारिक प्यार में वियोग में घट जाता है, लेकिन ईश्वरीय प्यार वियोग में बढ़ जाता है, प्रतिक्षण बढ़ता है। अतः उच्च कोटि के रसिक कहते हैं, संगम विरह विकल्पे वर्मिह विरहो न संगमस्तस्मात्। वियोग संजोग से श्रेष्ठ है, क्योंकि संजोग में आपका प्रियतम एक स्थान पर ही दिखता है। अगर बैठा है तो खड़ा नहीं होता। जित देखूं तित शाम मई है, वियोग में ये अवस्था होती है। प्रियतम चारों ओर दिखाई पड़ता है, सर्वत्र अनुभव होता है। ज्ञानी लोग कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है, मैं ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार से सखी वियोग में भी संजोग हो गया। सखी श्याम सुंदर जानबूझकर योग माया की शक्ति से हमें शारीरिक वियोग देकर हमारे प्रेम को बढ़ाते हैं, प्लस हमारी परीक्षा ले रहे हैं। देखिए वहाँ भी परीक्षा। आज हम लोग MA करते हैं, उसकी परीक्षा देते हैं, फिर PhD करते हैं, फिर DLED कर लें, सबकी परीक्षा होगी। गोपियों की परीक्षा के लिए श्याम सुंदर ने क्या किया? श्याम सुंदर ने वियोग दे दिया। वियोग देने से क्या सिद्ध हुआ? वियोग देने से यह सिद्ध होगा कि यदि गोपी श्याम सुंदर के सुख के लिए प्यार करती है तो श्याम सुंदर के किसी भी व्यवहार से उसको एतराज नहीं होगा, और अगर उनके किसी व्यवहार पर एतराज है तो फिर उसका वैसा प्यार नहीं है, धोखा है। यदि श्याम सुंदर हमसे अलग हो गए, पृथक रहकर सुखी रहते हैं, इसने हमको शरीर से पृथक किया है, लेकिन अंतःकरण से वे हमको अलग नहीं कर सकते क्योंकि वे परम दयालु हैं। अगर उनको न्यायी समदर्शी भी मान लें तो भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका किसी से प्यार होगा तो पक्षपात करेगा, और किसी का किसी में खार होगा तो वह न्याय नहीं करेगा। इससे श्याम सुंदर को अगर अकारण करुणा वरुणालय ना भी माने तो भी ये सिद्धांत के अनुसार वे न्याय ही कर सकते हैं। श्याम सुंदर ने हमको शरीर से भी पृथक इसलिए किया है कि वे हमारे प्रेम को परखना चाहते हैं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया, एक बार भगवान से मिलने के बाद अनंत काल तक कभी भी स्वप्न में भी एक बार भी उससे वियोग नहीं हो सकता। जीवात्मा परमात्मा का मिलन सदा का मिलन है। जिस मिलन में वियोग हो वह मिलन मायिक मिलन है, जागतिक मिलन है। जीवात्मा परमात्मा की उपाधि पाकर ही स्वतंत्र हो जाता है। कई बार हम लोगों को यह बताया गया है कि जैसे किसी आदमी पर कोई दूसरे जीवात्मा कुछ क्षणों के लिए हावी हो जाती है, उसे आप भूतग्रही कहते हैं। आप कहते हैं ना, अमुक व्यक्ति को भूत लग गया, यानी एक जीवात्मा पर दूसरे जीवात्मा ने अपना अधिकार जमा लिया। उतनी देर तक अधिकार जमाने वाली आत्मा उस पर हावी रहेगी और उतनी देर तक उसी के द्वारा, उसी की नॉलेज के द्वारा सब कार्य होंगे, उसको हम भूत ग्रहित कहते हैं। ऐसे ही एक बार जीवात्मा परमात्मा के मिलन के पश्चात जीव अनादि काल तक नंदपूत रूपी भूत हावी हो जाता है, फिर उस जीवात्मा का परमात्मा से वियोग कैसे? और यहाँ तो वियोग भी किनका हुआ? जो निष्काम प्रेमिकाएं ब्रज गोपियां, उनका श्याम सुंदर से वियोग। वियोग के विषय में भगवान राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि जानकी उनके विरह में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही हैं। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, नाम पहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाही प्राण के ही बाट। आपका नाम रात दिन उनकी रक्षा कर रहा है, आपका ध्यान द्वार है, नेत्र अपने चरणों ही में लगाए रहती हैं, तो फिर प्राण बाहर निकले भी तो कैसे। वैसे तो विरह के कारण प्राण निकल ही जाते, किंतु बाहर निकलने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। यदि आपका ध्यान और नाम छूट भी गया तो प्राण भी निकल जाएंगे, किंतु उनको आपसे इतना तो प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूट नहीं पाएगा और नाम ध्यान गाए बिना प्राण जा नहीं सकते। जानकी के मन वचन और कर्म तीनों आपसे ही संबंध है, सो उनके प्राण जा नहीं सकते। ऐसी ही गोपियां कह रही हैं कि चित्त अब एक क्षण भी किसी अन्य वस्तु में नहीं लगता है, शीघ्र प्रभु के दर्शन हो, ऐसी कोई कृपा करे। मुझे दो दर्शन गिरिधारी तोरी सांवरी सूरत पर वारी रे। विरह वेदना असहाय है, मीराबाई के शब्दों में प्रकट किया। ऐसी लगन लगाए कहाँ तू जासी, कहाँ तू जासी ऐसी लगन लगाए। तुम दिखे बिन कल न परत है, तड़प तड़प जीव जासी। गोपियों को कृष्ण दर्शन लालसा भी कैसी है। गोपियां आँखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्मा को भी कोसती हैं, क्योंकि वे पलकें हिलती रहने के कारण दर्शन में बाधा हो जाती है। पलकें झपकने से एक क्षण तक वह आपके दर्शन से वंचित हो जाती है। एक क्षण का विरह भी गोपियों के लिए असहाय है। आँखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्मा जड़ हैं, यदि उनसे पलकें बनाई ही ना होती, यदि ब्रह्मा ने पलकें बनाई ना होती तो श्याम सुंदर का दर्शन हम निरंतर करती। कुटिल कुंतलम श्री मुख चते जड़ उदीक्षताम पश्म कृत्रिशाम। नाथ, आपके दर्शन की प्रतीक्षा करते करते मैं थक गई। ये आँखें श्याम सुंदर को देखने के लिए थक हार गई हैं। अब तो गोपियां बेचैन हैं। दरस बिन दुखन लागे ने, जब से तुम बिछुड़े पीव प्यारे, कबहू न पायो चैन। दरस बिन दुखन लागे ने, शब्द सुनत मेरी छतियाँ कांपे, मीठे लागे बैन दरस बिन दुखन लागे ने, एक टक ठाड़ी पंथ निहारू, भई क्षमासी रेन दरस बिन दुखन लागे ने, विरह विथा का सो कहु सजनी, वह गई करवत एन दरस बिन दुखन लागे ने, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख मेटन सुख देन दरस बिन दुखन लागे ने, दुखकर्ता और सुखकर्ता तुम हमें श्याम सुंदर कब मिलोगे, आपके दर्शन कब होंगे, असह विरह वेदना के कारण ये गोपी रो रही है। ये गोपी केवल श्याम सुंदर का गुणगान करती करती रुदन कर रही है। रुह रुह दुह सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल साह, भागवत। कृष्ण दर्शन, श्याम सुंदर के दर्शन की गोपी को अथा इच्छा है, इसलिए वे गोपी से कहती है, हे गोलोक की गोपी, वो श्याम सुंदर का विरह अब नहीं सहा जाता। गोलोक की गोपी कहती है, अरे सखी, श्याम सुंदर ने हमारा परित्याग कहाँ किया है, अगर परित्याग होता तो वे हमें कब से अपने मन से भुला देते। शारीरिक त्याग परित्याग नहीं होता। अरे संसार में भी कोई किसी से प्रेम करता है तो निरंतर उसके साथ नहीं रहता, वह भी कार्यवश बाहर जाता है। इसलिए गोपी तू दुखी मत हो, श्याम सुंदर हमको विरह देके हमारा प्रेम बढ़ाने गए हैं, इसलिए श्याम सुंदर हमसे दूर हो गए हैं, शरीर से भी पृथक इसलिए हुए हैं कि वे हमारे प्रेम को परखना चाहते हैं। गोपियाँ हमारी इच्छा में इच्छा रखती हैं या नहीं, या अपनी इच्छा के अनुसार हमारी इच्छा रखवाना चाहती हैं। कोई भी सेवा, सेवा वही है जो स्वामी के सुख के लिए ही की जाए। स्वामी को किस में सुख मिले यह जानने की योग्यता जीव में तो नहीं है। इस कृष्ण यहाँ पर गोपी पूछती है कि उनको किसमें सुख मिलेगा, ये तो मैं जानती नहीं। तो गोलोक की गोपी कहती है कि जिसमें उनको सुख मिले, अगर तू नहीं जानती तो जो वो आज्ञा दे बस तू वही सेवा कर। रामायण में भी लिखा है, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज भी कहते हैं, नित सेवा मांगू क्षमा श्याम तेरी, ना भुक्ति ना ही मुक्ति मांगू मैं, बस आपकी निरंतर सेवा चाहे। और उस सेवा में आपकी रुचि में रुचि रखें, जो प्रिय रुचि महारुचि राखे, प्रेम रस सोई चाखे रे। स्वामी को नींद आ रही है और हम अपने सुख के लिए कहें, नहीं नहीं अभी क्या सोना है, इसका मतलब ये हुआ हमारी उपासना स्वामी करें। भगवान राम स्वयं कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरी आज्ञा मानता है बस वही मेरा सेवक है। इसलिए सखी श्याम सुंदर हमें इंद्रियों का वियोग रूपी अग्नि देकर हमारे हृदय रूपी स्वर्ण को चमकाना चाहते हैं। हमारा प्रेम दिन दूना रात चौगुना चमके और हम में निखार आए, और जो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हमारे अंदर है वह भी निकल जाए। तो ईश्वरीय प्रेम में सबसे पहला सबक यही सीखना है, श्याम सुंदर की रुचि में रुचि रखना है। प्रियतम के लिए हमारा जीवन हो और प्रियतम से ही केवल केवल हमारा संबंध हो। समस्त जीवात्माओं का संबंध केवल परमात्मा से है और समस्त जीवात्माओं पर परमात्मा का ही अधिकार है। यह बात अलग है कि वह हम सब की देखभाल करते हैं, किंतु हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है। इससे सखी श्याम सुंदर हमको वियोग देकर परखना चाहते हैं। कितना बढ़िया उत्तर है, गोलोक की गोपी ने समझा दिया। किंतु वेद की ऋचा को अभी भी संतोष नहीं। उसने कहा कि भला फिर यह बताओ कि वियोग में प्रेम कैसे करें, या तो मैं भी जानती हूं कि उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके वियोग में जो कष्ट होता है उसको किस प्रकार से बर्दाश्त करें। सखी ये तो प्रश्न ही गलत है, प्रेम तो अमरत्व प्रदान करता है, वे किसी को मारता नहीं है। जगत के प्रेम की अंतिम सीमा होती है मौत, लेकिन स्पिरिचुअल प्रेम की अंतिम सीमा अमृत होती है। सखी, यह मृत्यु का प्रश्न कहाँ से आ गया? अगर शरीर की मृत्यु भी होती है तो तुझसे क्या मतलब? या प्रियतम की आज्ञा पालन करने में ही जीवन की परम परिभाषा बननी है, तो फिर अपने शरीर का प्रश्न ही कहाँ रहा? यह शरीर तेरा नहीं, प्रियतम का है। यदि प्रियतम किसी वस्तु को इस स्थान के बजाय उस स्थान पर रखना चाहते हैं तो तू बोलने वाली कौन होती है? देखिए, ये रुमाल है, यहां से उठाकर इसको यहां रख दिया, जहां जरूरत समझेंगे उसको रख देंगे। जब शरीर उनका है तो यह उनके मन की बात है कि वे अपने सामान को 6 मील दूर वृंदावन में रखें अथवा अपने धाम में रखें, गोलोक में रखें, उनकी इच्छा। हमको उनके विरुद्ध कभी सोचना नहीं है, अन्यथा उनके प्रेम से हम वंचित हो जाएंगे। तो श्याम सुंदर ने जो बाहर से परित्याग किया है वह योग माया की शक्ति के द्वारा किया है, इसलिए किया है कि वह हमारी परीक्षा लेंगे प्लस हमारे प्रेम की वृद्धि करेंगे, क्योंकि अधिक संजोग में हम लोग गलती करते हैं, अपराध करते हैं, गुस्ताखी करते हैं। संजोग भी कंपलसरी है लेकिन वियोग भी कंपलसरी है। साधक को दोनों की परमावश्यकता है, सिद्धि में भी रस वृद्धि और वियोग में भी रस वृद्धि। आप लोग देखते तो हैं, जब वृंदावन जाते हैं तो बांके बिहारी मंदिर के बाहर खड़े होते हैं कि मंदिर में जब बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे तो पंडित जी ने पर्दा लगा दिया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया। ये प्रथा क्या है? ये प्रथा इसलिए बनाई गई है कि हम अपनी भावना को बढ़ाएं, अपने प्रेम को बढ़ाएं। संजोग के बाद वियोग, वियोग के बाद संजोग, उसमें अधिक रस की अनुभूति होगी। इसी प्रकार सखी, प्रेम में विषामृत होता है, ऊपर देखने में विष लगता है, कष्ट मालूम होता है, लेकिन अंदर से क्या सुख मिलता है या बाहर से नहीं जाना जा सकता। इसलिए सखी, प्रेम में मृत्यु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब तो अमरत्व प्रदान करने वाला है प्रेम, अमरत्व प्रदान कर रहा है। जब तूने शरीर ही उनको दे दिया तो फिर इस पर तेरा क्या अधिकार? यह तो बहुत बड़ा गुनाह है, किसी चीज का किसी को दान कर दिया जाए और फिर उससे वह ले लिया जाए। संत और ईश्वर को दान करने के बाद फिर चोरी चोरी उसका उपयोग, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं, या कृतघ्नि बनना है, उनके एहसान को ना मानना है। इस प्रकार से वेद की ऋचा ने गोलोक की गोपी से कई प्रश्न किए। उस सभी प्रश्नों को सुनकर वह वेद की ऋचा अपने हृदय में श्याम सुंदर को अधिक प्रेम को बढ़ाती रही बढ़ाती रही। आज उसका प्रेम अथाह हो गया और उसको समझ आ गया और बोध भी हो गया कि श्याम सुंदर हमको वियोग क्यों दे गए, क्योंकि हमारे प्रेम की रस वृद्धि हो जाए। ऐसे प्रेमावतार रसिक वर भक्ति योग जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधे।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग जगत गुरु कृपालु परिषद पॉडकास्ट।